समीक्षा पेंडलिंग पहुंच गई थी। आर्यांश को वहां उसे छोटे से घर में रहते देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन आर्यांश ने साफ मना कर दिया था। जिद करते हुए समीक्षा भी वहीं पर रुक गई थी। तो वहीं समीक्षा के अचानक वहां पहुंचने पर आर्यांश को भी समझ आ गया था कि दीवा ने ही उन्हें उसका एड्रेस बताया होगा। आर्यांश तुरंत दीवा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। पहले तो दीवा ने उसके सामने अनजान बनने का नाटक किया, लेकिन फिर दीवा को आर्यांश के सामने ये स्वीकार करना पड़ा कि उसी ने समीक्षा को आर्यांश के बारे में बताया था। आर्यांश ने दीवा को सीधे सीधे चेतावनी दी कि वो उसकी जिंदगी से दूर रहे, वरना अगर आर्यांश दोबारा उसकी जिंदगी में आया तो फिर दीवा के पास उसे दूर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। आर्यांश वहां से चला गया था और उसकी बातें सुनकर दीवा परेशान हो गई। उसने जल्दी से अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंद को साफ किया और टेबल पर रखा पानी एक घूंट में पी गई थी। मैंने कब इसकी लाइफ में इंटरप्ट किया? मुझे बस इसकी फैमिली की चिंता थी, वो इसके लिए बहुत परेशान थे। और क्या मतलब सब खत्म हो गया है? गलती थी इसकी थी, इसलिए ये मुझसे नफरत कैसे कर सकता है? दीवा ने हड़बड़ाई आवाज में कहा, उसकी पलकें भीग गई थीं। दीवा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे आर्यांश के शब्द इतने चुप क्यों रहे हैं। देखा जाए तो वो खुद आर्यांश को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी और वो पूरी तरह दूर हो भी गया था। आर्यांश को अचानक देखने पर उसे खुशी हुई थी या फिर तकलीफ, ये दीवा खुद नहीं समझ पा रही थी। वहीं दीवा को समझाने के बाद आर्यांश उसके केबिन से निकला। तब उसने रिसेप्शन पर एक लड़के की आवाज़ सुनी, क्या डॉक्टर दीवा गोयनका यहीं काम करती हैं? दीवा का नाम एक अनजान शख्स के मुंह से सुनकर आर्यांश का ध्यान अपने आप उस तरफ चला गया था। वो आर्यांश की ही उम्र का लग रहा था और उसके हिंदी बोलने में भी हल्का अमेरिकन एक्सेंट आ रहा था। आर्यांश वहीं पर रुककर उसकी तरफ देखने लगा। जी आप कौन? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। ओ मेरा नाम नील दीक्षित है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर गोयनका के पेरेंट्स के कहने पर उनसे यहाँ मिलने आया हूँ, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आर्यांश ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर दिया था। गोयनका फैमिली की मर्जी से वो दीवा से मिलने के लिए आया था, इसका मतलब कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता था। आर्यांश पहले ही दीवा की हरकतों से चिढ़ा हुआ था और ऊपर से उसकी फैमिली उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। ये सुनकर आर्यांश का खुद को गुस्से पर काबू कर पाना मुश्किल साबित हो रहा था। मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा, वो मेरी 3 साल की मेहनत को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती है, आर्यांश ने मन ही मन कहा और अपना ध्यान उस लड़के से हटाकर बाहर जाने लगा। उसका मन अभी भी उस लड़के और दीवा में उलझा हुआ था। आर्यांश काम पर तो आ गया था पर बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा था। वहीं रिसेप्शनिस्ट के बताने पर नील भी दीवा के केबिन में पहुंच गया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दीवा को दिया और कहा, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे मिलने के लिए कहा था और सच कहूँ तो तुम्हारी फोटो देखते ही तुम मुझे अच्छी लगी थी। मुझे तुम्हारे सिंगल मदर होने से भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। क्या मतलब अडॉप्टेड चाइल्ड है? तुम किसी बच्चे को ऐसा नहीं बोल सकते हो और गलती से भी उसके सामने मत कह देना, दीवा गुस्से में बोली। ओके रिलैक्स, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे वर्ड्स भले ही सही ना हो पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, नील शांत आवाज में उसे समझाने लगा। क्या उन्होंने मेरे बारे में सब बताया? दीवा ने हल्का सख्ती से पूछा। इस पर नील ने हाँ में सिर हिला दिया था। फिर भी दीवा ने कन्फर्म करने के लिए आगे कहा, क्या उन्होंने ये भी बताया कि मैं किसी के साथ 6 मंथ तक लिव इन रिलेशनशिप में थी? नील ने मुस्कुराकर हामी भरी और जवाब में कहा, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम इन सब बातों का बहाना लगाकर मुझे भगाना चाहती हो? कोई बात है तो बता सकती हो? नहीं कोई बात नहीं है, बस मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। तुम चाहो तो शिव से मिल सकते हो, वो यहाँ कॉमन रूम में बैठकर कोई एक्टिविटी कर रहा होगा। और बी केयरफुल, तुम दोनों का बॉन्ड ही आगे हमारे रिश्ते का फ्यूचर तय करेगा, दीवा ने जवाब दिया। एक पल के लिए नील भी हैरान रह गया था। उसने नहीं सोचा था कि दीवा इतनी आसानी से हाँ कह देगी। उसे यही पता चला था कि उसे दीवा से मिलना है और साथ ही अपने बिहेवियर को लेकर केयरफुल रहना है ताकि उसकी कोई भी बात गलती से भी दीवा को हर्ट ना कर दे। क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? नील ने आंखें छोटी करके पूछा। मैंने हाँ नहीं कहा है, बस एक चांस देना चाहती हूँ, कॉमन रूम उस तरफ है, दीवा ने इतना ही कहा। नील ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वहां से जाने लगा। उसका बिहेवियर थोड़ा चाइल्डिश था और दिखने में भी वो अच्छा खासा हैंडसम था। एक बार की मुलाकात में दीवा को उसके बारे में इतना ही पता चला। दीवा ने गहरी सांस ली और चेयर पर बैठ गई थी। उसने अपना सिर पकड़ रखा था। वो नील से मिली थी लेकिन उसके दिमाग में आर्यांश ही चल रहा था। अगर मुझे सच में आर्यांश से आगे बढ़ना है तो मुझे उसकी यादें और उसे पीछे छोड़ना ही होगा। सही कहा उसने, अब सब खत्म हो चुका है तो दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, दीवा ने खुद को समझाया। वहीं आर्यांश के जाने के बाद समीक्षा अंदर गई। सुमन अचानक उसे वहां देखकर चौंक गई थी। वो बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी लेकिन समीक्षा ने उसे रोकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। लेटी रहिए मिसेस वर्मा, समीक्षा बोली और फिर वहीं उनके पास में बैठ गई थी। उसने सुमन के चेहरे की तरफ देखा जो काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। समीक्षा के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। उसने धीमी आवाज में कहा, आप तो उसे समझा सकती थी ना, वो इन सब का आदी बिल्कुल नहीं है। हमेशा से उसने एक लग्जीरियस लाइफ बिताई है, इतनी ठंड में तो उसे एक पल में जुकाम हो जाता है। समीक्षा का मन रोने का कर रहा था। वो झूठ नहीं कह रही थी। सुमन को भी अच्छे से याद था जब वो यहाँ पर नए नए आए थे तब आर्यांश के लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल था। वो लगभग बीमार ही रहता था। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि दूसरी जगह चलते हैं। उस वक्त हमारी हालत ठीक नहीं थी, सिर्फ मेरा ये घर ही था जहाँ हम बिना किराए दिए रह सकते थे। सुमन ने नजरें झुकाकर कहा, आप जानती है ना उसका गुस्सा, वो कभी मदद लेने के लिए नहीं आता, लेकिन आप एक फोन कॉल कर देती। ठीक है, वो हमसे नहीं मिलना चाहता था और ना ही हमसे हेल्प लेना चाहता था, पर बिना बताए भी तो हेल्प की जा सकती है ना, पता नहीं क्या काम करता होगा, समीक्षा ने भारी आवाज में कहा। सुमन जवाब में कुछ नहीं बोली, बस उसकी नजरें झुकी हुई थी। उससे ये बताते तक नहीं बन रहा था कि आर्यांश दिन में एक होटल में वेटर का काम करता है तो रात में अक्सर फैक्ट्री में सामान अनलोड करने के लिए जाता था। मुझे माफ कर दीजिए मिसेस कपूर, सुमन ने लगभग अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन समीक्षा ने उसके हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया था। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आपकी वजह से मुझे ये तो तसल्ली थी कि वो पूरी तरह अकेला नहीं था। वो क्यों खुद को सजा दे रहा है, अब तक तो दीवाने भी उसे माफ कर दिया होगा और उसके दादाजी भी बहुत बार उसके बारे में पूछते रहते हैं। अगर दीवाने उसे माफ नहीं किया है तो मैं जाकर उससे बात करूंगी। अगर वो ये दीवा की नाराजगी के चलते कर रहा है तो मेरा यही कहना है कि अब बस बहुत हो गया है। कपूर इंटरनेशनल के सीईओ की चेयर अभी भी उसी का इंतजार कर रही है, समीक्षा बोली। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सुमन के सामने रोए ना, लेकिन बोलते वक्त बार बार उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सुमन को भी समझ नहीं आया कि वो समीक्षा को तसल्ली देने के लिए क्या कहे, बस वो चुपचाप उसकी शिकायतें और आर्यांश को घर ले जाने के तरीके को सुन रही थी।
ठीक है, पर उसने जिद पकड़ ली है ये टफ लाइफ बिताने की, तो मैं भी उसके साथ यहीं पर रहूंगी। जब मुझे बीमार और परेशान देखेगा तो खुद ब खुद अकल आ जाएगी, समीक्षा ने खुद को सख्त करते हुए कहा। नहीं मिसेस कपूर, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना उनके लिए एक साथ दो लोगों के हॉस्पिटल बिल उठाना मुश्किल हो जाएगा, सुमन ने जल्दी से कहा तो समीक्षा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हालांकि बोलने के बाद सुमन को एहसास हुआ कि उसने अनजाने में आर्यांश की फाइनेंशियल कंडीशन को उनके सामने रख दिया है। उन्होंने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली थीं। ठीक है, कुछ मत बताइए, मैं खुद ही पता लगा लूंगी, समीक्षा ने अपने आंसू साफ करके कहा और वहां से उठ गई थीं। वो पूरे घर में घूम रही थी। सुमन का पैतृक घर होने की वजह से घर बड़ा था और उसमें 4-5 कमरे बने हुए थे। वहां का सामान और बाकी चीजें पुराने जमाने की थीं। सुख सुविधा के कोई खास अच्छे साधन भी मौजूद नहीं थे। आई हेट यू आर्यांश, और यहां से तुम्हें वापस ले जाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली, समीक्षा ने मन ही मन फैसला किया। समीक्षा समझ गई थी कि उसे सुमन से कुछ पता नहीं चलने वाला है, इसलिए वो दीवा से मिलने पहुंच गई थी। दीवा का भी ब्रेक टाइम था, इस वजह से वो फ्री थी। ऊपर से नील शिव को संभाल रहा था। अचानक समीक्षा को अपने सामने देखकर दीवा थोड़ा हड़बड़ा गई थी। आर्यांश पहले से चेतावनी देकर गया था। ऊपर से समीक्षा के वहां आने पर दीवा जल्दी से बोली, प्लीज़ आंटी, आप यहां से चली जाइए, उसे सब पता चल गया है और वो मुझ पर गुस्सा करके गया है। दीवा की उलझन को समीक्षा समझ सकती थी। उसने हल्के से सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस लेकर विनती भरे स्वर में कहा, क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकती दीवा? मैं जानती हूँ उसकी वजह से तुमने अपना बच्चा और बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन उस बच्चे के जाने के बाद आर्यांश ने भी उतनी ही तकलीफ सही है, और तुम खुद देख सकती हो कि वो खुद को सजा देने के लिए किस कदर जिद पर अड़ा हुआ है। आंटी, मेरे दिल में उसे लेकर कुछ नहीं है, और वो अच्छे से जानता है कि उस बात के लिए मैंने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया था। उसे भूलना मुश्किल है, पर हाँ, मेरे दिल में आर्यांश को लेकर अब गुस्सा नहीं है, दीवा ने समीक्षा को समझाया। तो क्या तुम फिर से उसके साथ आगे बढ़ सकती हो, समीक्षा ने तुरंत कहा। कुछ पलों के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। दीवा ने समीक्षा की तरफ देखा और नाम ही सिर हिला गया था। समीक्षा के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे, लेकिन वो दीवा को फोर्स भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे समझा तो सकती हो ना कि वो वापस चला जाए? मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा, बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो बेटा, समीक्षा ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पर कोशिश करूंगी, दीवा ने जवाब दिया। समीक्षा ने दीवा को थैंक्स कहा और वहां से जाने को हुई। तभी उसे याद आया कि सुमन ने कुछ देर पहले कहा था कि आर्यांश एक साथ दो लोगों के मेडिकल बिल नहीं उठा पाएगा। इससे भी जाहिर हो रहा था कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। समीक्षा ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दीवा को देते हुए कहा, मिसेस वर्मा की हालत काफ़ी ख़राब है, लगता है उनके मेडिकल एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तुम ये कार्ड रख लो और उनके ट्रीटमेंट में जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़े तुम इस्तेमाल कर सकती हो। आर्यांश को भी हेल्प चाहिए तो तुम मिसेस कपूर के ज़रिए उसे पैसे दे देना। प्लीज़ ये मत कीजिए आंटी, सुमन माँ के मेडिकल बिल मैं खुद देख सकती हूँ, और इस बारे में अगर आर्यांश को पता चला तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। आप सीधे सीधे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज कर रही हैं, और जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, दीवा ने उन्हें समझाया और वो कार्ड वापस उन्हें दे दिया था। समीक्षा ने भी आगे जिद नहीं की और वहां से वापस सुमन के घर लौट गई थी। शाम को दीवा जब अपने काम से फ्री हुई तब नील के जिद पड़ने पर वो शिव को साथ लेकर खाना खाने के लिए बाहर गई। दीवा उस रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहती थी जहां आर्यांच काम करता था, लेकिन रात को देर हो जाने की वजह से सभी रेस्टोरेंट लगभग बंद हो चुके थे और वही उनके सबसे करीब था। थैंक गॉड तब मान गई, वरना मुझे लगा कि घर जाकर खाना बनाना होगा, नील ने हल्का हंसकर कहा और रेस्टोरेंट में पहुंचकर दीवा के लिए चेयर पुल की। दीवा ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि आर्यांश अपनी शिफ्ट पूरी करके जा चुका हो। दीवा ने एक नज़र इधर उधर देखा, रेस्टोरेंट में काफ़ी भीड़ की, उसे आर्यांश कहीं नज़र नहीं आया तो उसने राहत की सांस ली। वहीं किचन एरिया में मैनेजर ने आर्यांश से कहा, अभी उस कोने वाली टेबल पर कोई आया है, जाकर उनके ऑर्डर्स ले आओ। आर्यांश ने हल्के से सिर हिलाया और बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस टेबल पर गई उसकी मुठ्ठियाँ खुद बखुद कस गई थीं। पूरे दिन से वो खुद को यही समझा रहा था कि उसे दीवा की जिंदगी से दूर रहना चाहिए। ये भी हो सकता था कि वो लड़का बस मिलने के लिए आया है और दीवा उसे मना कर देगी, पर शाम को दीवा को उस लड़के के साथ वहीं पर देखकर आर्यांश के सीने में दर्द सा उठा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, दीवा ने आर्यांश के साथ आगे बढ़ने से मना कर दिया है, तो क्या सच में दीवा नील के साथ आगे बढ़ेगी? मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है कि क्या आप सच में आर्यांश दीवा को डिजर्व करता है या फिर दीवा की स्टोरी किसी और के साथ दिखानी चाहिए? जैसा कि मैंने कहा था कि स्टोरी के एक फेज के बाद मैं ये डिसीजन आपसे ही पूछने वाली हूँ, तो आज आप सब बताकर जाना।